ओम शांति। 18/1/99 का अव्यक्त वाणी
और समर्पण का वरदान दिए। आज के दिन को बाप दादा यज्ञ की स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिन कहते हैं। आज के दिन ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में बैकबोन बन अपने बच्चों को साकार रूप में विश्व के मंच पर प्रत्यक्ष किया। इसलिए इस दिवस को बच्चों के प्रत्यक्षता का दिन कहा जाता है और समर्थ दिवस कहा जाता है, विल पावर देने का दिवस कहा जाता है। ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में कार्य कराए रहा है। ऐसे क्यों बोला? गुप्त रूप में कार्य कराए रहा है, कार्य तो प्रत्यक्ष है, गुप्त कहाँ है? दुनिया के सामने गुप्त है, बच्चों के सामने गुप्त है, किसके सामने गुप्त है? अगर गुप्त नहीं है तो फिर बोला क्यों? ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में कार्य कराए रहे हैं। कराने वाला कौन? ब्रह्मा और बाप। ब्रह्मा कौन? जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, जो अव्यक्त हो गए, वही ब्रह्मा। इंस्पिरेटिंग पार्टी जिसका नाम दिया है। और बाप, बाप कौन? शिव बाप। तो ये ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में कार्य करा रहा है। जैसे बैकबोन की बात की अभी, तो बैकबोन पीछे होती है, रीढ़ की हड्डी होती है पीछे, और आदमी होता है सामने दिखाई पड़ता है, लेकिन बैकबोन की हड्डी दिखाई नहीं पड़ती है। उसी तरीके से जो बाप दादा हैं, माने शिव की सूल और ब्रह्मा की सूल, वो पीछे से पावर दे रही है, और बच्चे प्रत्यक्ष सामने हैं, लेकिन फिर ये भी बोल दिया गुप्त रूप से कार्य कराए रहा है उन बच्चों के द्वारा। इसका मतलब यह है कि दुनिया में जो बड़े बड़े मेले मलाकड़े हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंस हो रही है, सम्मेलन हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रही है, ये तो दुनिया के सामने प्रत्यक्ष रूप हुआ, उसके लिए ये बात नहीं कही गई। जरूर जो शास्त्रों में पांडवों का गायन है कि पांडव गुप्त होकर के घूमते थे, कोई पहचान नहीं सकता था, उसी तरह ये बात बोली गई है कि ब्रह्मा बाप गुप्त रूप से कार्य कराए रहे हैं बच्चों के द्वारा। अलग नहीं है, साथ ही है, सिर्फ गुप्त रूप में कराए रहा है। यह अव्यक्त दिवस बच्चों के कार्य को तीव्र गति में लाने का दिवस है। अभी भी हरेक बच्चे की छत्र छाया बन पालना का कर्तव्य कर रहे हैं। जैसे माँ बच्चों के लिए छत्र छाया है, ऐसे ही अमृत वेले से लेकर ब्रह्मा माँ चारों तरफ बच्चों की देखरेख करते रहते हैं। साकार में निमित्त बच्चे हैं, लेकिन भाग्य विधाता ब्रह्मा माँ हर बच्चे के भाग्य को देख बच्चों को विशेष शक्ति, हिम्मत, उमंग, उत्साह की पालना करते रहते हैं। जो बाप तो साथ में है ही, लेकिन विशेष ब्रह्मा का पालना का पार्ट है। लेकिन अव्यक्त वाणी में बोला हुआ है कि ब्रह्मा का पार्ट इस साकार शक्ति पर अंत तक लुधा हुआ है। जब तक स्थापना का कार्य नहीं होता है, तब तक ब्रह्मा का पार्ट निभा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मा सिर्फ सूक्ष्म शरीरधारी ही है और वो सूक्ष्म शरीरधारी साकार बनकर के कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि ये भी बता दिया कि भुजाएं अपना कार्य कर रही हैं तो जरूर कोई कराने वाला है, तब तो हजार भुजाएं अपना सहयोग दे रही हैं, तो इसलिए ये विशेष शब्द भी लगाया। शिव बाप तो साथ में है ही है, लेकिन विशेष ब्रह्मा का पालना का पार्ट है, तो पार्ट तो साकार सृष्टि पर ही होता है, ऐसे नहीं कि सूक्ष्म बतन में कोई पार्ट प्ले होता है। आज के दिन भाग्य विधाता बाप हर बच्चे को विशेष स्नेह के रिटर्न में वरदान का भंडारी बनकर के बांटते हैं। जो बच्चा जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर के मिलन मनाते हैं, ये विशेष बात क्या टाइम चल रहा है अंतिम, तो अंतिम समय में अगर इस चीज को तीव्र करना है, भाग्य बनाने की इस चीज, तो अव्यक्त बाप दादा से वो ही अच्छी तरह मिलन मना सकते हैं, खुशी रह सकते हैं, खुशी का वरदान ले सकते हैं, जो स्वयं अपने को अव्यक्त स्थिति में स्थित कर सकते हैं। अव्यक्त स्थिति बना देह की याद में रहे तो व्यक्त स्थिति ही साकार स्थिति ही, और मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ इस स्मृति में रहे तो कैसी स्थिति हुई, अव्यक्त, जो आंखों से देखा जाए उसे कहते हैं व्यक्त, और जो आंखों से न देखा जाए उसे कहते हैं अव्यक्त। अब क्योंकि आत्मा तो आंखों से नहीं दिखाई पड़ती, उसी आत्मा की स्मृति में रहने वाले बच्चे वो ही अव्यक्त स्थिति वाले बच्चे हुए। तो जो बच्चा जितना अव्यक्त मिलन में स्थित होकर के मिलन मनाते हैं, उस हरेक बच्चे को वरदान मिलता है, और ये वरदान सहज प्राप्त होता है, खुला भंडार वरदानों का है, जो चाहिए जितना चाहिए उतना प्राप्त होने का श्रेष्ठ दिवस है, इसमें एक रिटर्न होता है। क्या सहज वरदानों की गिफ्ट है, तो गिफ्ट में मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सहज प्राप्ति हो जाती है, गिफ्ट मांगी नहीं जाती है, स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। पुरुषार्थ से वरदान के अनुभूति की प्राप्ति अलग चीज है, उसको स्वतः नहीं कहेंगे, लेकिन आज के दिन ब्रह्मा माँ स्नेह के रिटर्न में देते हैं, तो आज के दिन सभी ने सहज वरदान प्राप्त होने की अनुभूति की। अभी भी सच्चे दिल के स्नेह से रिटर्न वरदान में प्राप्त कर सकते हैं। वरदान प्राप्त करने का साधन है दिल का स्नेह, दिखावे का नहीं। जहाँ दिल का स्नेह होता है वो ऐसा खजाना है जिस खजाने द्वारा बाप दादा द्वारा जो चाहे अविनाशी वरदान प्राप्त कर सकते हो, और वो स्नेह का खजाना हर बच्चे के पास है, तो हर बच्चे के पास है इसलिए का खजाना है, खजाना है तब तो पहुँचे हो, कहाँ पहुँचे हो, अव्यक्त बाप दादा के पास पहुँचे, इसने खींच करके लाया है ना, और इसने में रहना तो बहुत सहज है। पुरुषार्थ की मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि स्नेह का अनुभव हर आत्मा को होता ही है, सिर्फ अब जो बिखरा हुआ स्नेह है, कुछ कहीं बिखरा हुआ है, कुछ कहाँ बिखरा हुआ था, वो बिखरा हुआ स्नेह एक के साथ जोड़ लिया है, क्योंकि पहले अलग अलग संबंध था और अब एक में सारे ही संबंध हैं,
तो सहज सर्व स्नेह एक से हो गया, इसलिए हर एक बच्चा कहता है कि मेरा बाबा। तो स्नेह किससे होता है? सभी कहते हैं ना मेरा बाबा, या दादियों का बाबा है, या महारथियों का बाबा है, सबका बाबा है ना। आज के दिन कितने बार हर एक बच्चे ने दिल से कहा मेरा बाबा, मेरा बाबा। कह रूरियान की, सभी ने रूरियान की ना। सारा दिन क्या किया? इतने के पुष्प बाप दादा को अर्पित किया, बाप दादा के पास इतने के पुष्प बहुत बढ़िया से बढ़िया पहुंच रहे थे। स्नेह तो बहुत अच्छा रहा। अब बाप कहते हैं स्नेह का स्वरूप साकार में इमर्ज करो, सिर्फ स्मृति तक नहीं, स्वयं भी अनुभव हो कि हम साकार स्वरूप इमर्ज किए हुए हैं, और दूसरों को भी स्नेह का अनुभव ऐसा हो कि उन्हें लगे कि ये साकार की प्रीति इनके दिल में समाई हुई है। लेकिन वो इमर्ज कब होगा? वो है समान बनना। किसके समान? किसके समान बनना? सुख संपत्तिवासी ब्रह्मा के समान। जैसे उन्होंने शरीर छोड़ दिया, वैसे हम भी शरीर छोड़ दें, सुख संपत्तिवासी बन जाएं। समान बनो। समान बनने का मतलब ये हुआ कि अभी भी साकार मौजूद है, ब्रह्मा का पाठ साकार में चल रहा है, लेकिन अव्यक्त स्टेज वाला है। अभी ये समान बनने का लक्ष्य तो है, सभी के पास है। अभी साकार से जो लक्षण है, साकार इसलिए कि वो दिखाई दे। जिस भी बच्चे को देखें, जो भी मिले, संबंध संपर्क में आए, उन्हें भी स्पष्ट दिखाई दे कि ये तो जैसे परमात्मा बाप, ब्रह्मा बाप के गुण हैं। वह बच्चों की सूरत और मूरत में दिखाई दे, अनुभव करें कि इनके नयन, इनके बोल, इनकी वृत्ति, इनके वाइब्रेशन दुनिया से न्यारे। मधुबन में आते हैं तो बाप ब्रह्मा के कर्म साकार में होने के कारण भूमि में तपस्या, कर्म और त्याग के वाइब्रेशन समाये हुए होने के कारण यहाँ सहज अनुभव हो जाता है। अनुभव करते हैं ना कि ये संसार न्यारा है। कौन सा संसार? मधुबन का संसार। क्योंकि ब्रह्मा बाप और विशेष बच्चों के वाइब्रेशन से वायुमंडल अलौकिक बना हुआ है। ऐसे ही जो बच्चे जहाँ भी रहते हैं, जो भी कर्म क्षेत्र है, हर एक बच्चे से बाप समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ व्यक्ति का वायुमंडल अनुभव में आए। इसको बाप दादा कहते हैं बाप समान बनना। प्रश्न 2:18-99 के पुस्तवाणी। जो अभी तक संकल्प है बाप समान बनना ही है, लेकिन संकल्प अभी चेहरे और चलन से दिखाई दे, जो भी संबंध संपर्क में आए उनके दिल से ये आवाज निकले कि ये आत्माएं बाप समान है। क्या बात बताई? किनकी अनुभूति की बात बताई? जो भी संबंध संपर्क में आए उनके दिल से ये आवाज निकले कि ये आत्माएं बाप समान है। बाप समान है? संबंध संपर्क में आने मात्र से ही उनको बाप समान का अनुभव कैसे होगा? क्या वो पहले से बाप को पहचानते हैं? इनकी अनुभूति की बात की गई। जो संबंध संपर्क में आए हैं वो बाप समान हैं, उनको ये अनुभूति हो, तो वो उनके दिल में कौन सा बाप समाया हुआ है? कौन से बाप की बात कर रहे हैं? इसका मतलब उन्होंने पहले से बाप को जाना हुआ है क्या? पहले से बाप को पहचानते हैं क्या? ये दुनिया वालों की बात है या ब्राह्मणों की दुनिया की बात है? ये तो बात सिर्फ ब्राह्मणों की दुनिया की है, जिन्होंने पहले भी बाप को जाना है, सुना है, या कोई कोई ने देखा भी है, तो उनके दिल से ये आवाज निकले कि ये आत्माएं बाप समान है। जैसे तुम्हें बीच बीच में खांसी की आवाज आ रही है, आज माइक खराब है, फिर भी मिलना तो है ना, और ये भी तो माइक है ना, ये माइक नहीं चलता है तो ये माइक भी काम का नहीं है, कोई हर्जा नहीं है, ये भी मौसम का फल है। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों से ये प्रत्यक्षता चाहते हैं। कौन सी? कि हर बच्चे के चेहरे से, कर्म से, वाचा से, वाइब्रेशन से बाप के स्वरूप की प्रत्यक्षता हो, जैसे वाणी द्वारा प्रत्यक्षता करते हो तो वाणी का प्रभाव पड़ता है, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रभाव गुण और कर्म का पड़ता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में भाषण करने वाले, वाचा चलाने वाले तो बहुत हो गए, इसलिए वो तो एक सामान्य बात हो गई, लेकिन कथनी और करनी कम देखने में आती है, जो दुनिया वाले चाहते हैं। तो एक एक बच्चों के नैनों से ये अनुभव हो कि इनों के नैनों से कोई विशेषता है, साधारण का अनुभव नहीं करें, अलौकिक है। क्वेश्चन उठे उन्हों के मन में कि ऐसे अलौकिक नैन वाले कैसे बने और कहां से बने, स्वयं ही सोचे और पूछे कि इनको बनाने वाला कौन है। जैसे आजकल के समय में भी कोई बढ़िया चीज देखते हो तो दिल में उठता है कि ये बनाने वाला कौन है, ऐसे ही अपने बाप समान बनने की स्थिति द्वारा अपने बाप को प्रत्यक्ष करो। आजकल मेजॉरिटी आत्माएं सोचती है कि क्या ऐसे भी कोई आत्माएं बन सकती है, इस साकार शक्ति में, इस वातावरण में रहते हुए भी ऐसा कोई बन सकता है? साकार शक्ति में वातावरण इतना खराब है, वाइब्रेशन चारों ओर इतने खराब हैं, फिर भी स्टेज बनाए, तो आप उन्हों को ये प्रत्यक्ष में दिखाओ कि हाँ बन सकता है, बन सकता है और हम बने हैं, क्योंकि आजकल प्रत्यक्ष प्रमाण को ज्यादा मानते हैं, सुनने और बोलने से भी ज्यादा देखना चाहते हैं। तो चारों ओर कितने बच्चे हैं, हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाए तो मानने और जानने में मेहनत नहीं लगेगी, मानने वाले मानेंगे भी और जानेंगे भी, फिर आपकी प्रजा बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगी, मेहनत और समय कम लगेगा। प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करने से जैसे प्रजा का स्टैंप लगता जाएगा और राजा रानी तो आप बनने ही हैं, तो बाप दादा एक बात का फिर से अटेंशन दिला रहे हैं कि वर्तमान वायुमंडल के अनुसार मन में, दिल से अभी वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। ऐसी अगर स्टेज कब बनेगी बाप समान स्टेज? जब वैराग्य वृत्ति हो। बाप दादा ने हर बच्चे को, चाहे प्रवृत्ति में हो, चाहे सेवा केंद्र पर है, चाहे कहां भी रहते हैं, स्थूल साधन तो हरेक को दिए हुए, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसके पास खाना न हो, पीना न हो, रहने के साधन न हो। जो बेहद के वैरागी की वृत्ति में रहते हुए आवश्यक साधन चाहिए वो सब के पास है। किसकी बात हो रही है? दुनिया वालों की। दुनिया में तो ऐसे बहुत से हैं जिनको रोटी भी नहीं मिलती, कपड़ा भी नहीं मिलता, मकान भी नहीं मिलता, और उसके अभाव में शरीर भी तोड़ देते। लेकिन बाबा के बच्चों की विशेष बात बताई, उनमें से कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको ये तीनों चीजें, रोटी, कपड़ा और मकान न मिलता हो। ये सबके पास है। अपने अलबेलेपन या आलस्य के कारण अगर कोई को कमी है तो वो उसका कारण है। बाकी ड्रामा अनुसार बाप दादा जानते हैं कि आवश्यक साधन तो सबके पास है। साधन है, जो आवश्यक साधन है वो तो चलना ही है, लेकिन कहाँ कहाँ आवश्यकता से भी ज्यादा साधनों के आधार पर साधना कम हो जाती है। और साधन खूब प्रयोग करते हैं या साधनों का प्रयोग कराना भी ज्यादा आता है। इसलिए बाप दादा आज के बाप समान बनने के दिवस पर विशेष अंडरलाइन कराए रहे हैं। किस बात पर? कि साधनों के प्रयोग का अनुभव अभी बहुत किया और जो किया वो भी बहुत अच्छा किया, लेकिन अब साधना को बढ़ाना है, अर्थात बेहद की वैराग्य व्यक्ति को लाना है। किसे किसे वैराग्य? देह और देह के संबंधों से तो वैराग्य बताया ही, लेकिन जो देह के साधन है उन सब से वैराग्य वृत्ति को लाना। ब्रह्मा बाप को देखा, लास्ट घड़ी तक बच्चों को साधन बहुत दिए, लेकिन स्वयं साधनों के प्रयोग से दूर रहे। साधन होते हुए भी दूर रहना, यही वैराग्य है ही नहीं, और कहे कि हमको तो वैराग्य है, वो बात अलग हो जाती। हम तो है ही वैरागी, कुछ है ही नहीं। होते हुए नॉलेज और विश्व कल्याण की भावना से, बाप को स्वयं को प्रत्यक्ष करने की भावना से, अभी साधनों के बजाय जैसे स्थापना के आदि में साधन कम नहीं थे, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की भट्टी में पड़े हुए थे। वह जो 14 वर्ष की तपस्या की, ये की आज की बात, यह बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल था। बाबा के पास कोई कमी नहीं थी, तो बाप दादा ने अभी साधन बहुत दिए हैं। साधनों की अभी भी कोई कमी नहीं है, लेकिन होते हुए भी बेहद का वैराग्य है। इस समय इस विधि की आवश्यकता है। विश्व की आत्माओं के कल्याण के प्रति भी चारों ओर इच्छाएं बढ़ रही हैं, और उन इच्छाओं के बस आत्माएं परेशान हैं। चाहे कोई पद्मा पद्मपति है, लेकिन इच्छाओं से वो भी परेशान। वायुमंडल में आत्माओं की परेशानी का विशेष कारण ये हद की इच्छाएं। अब आप अपने बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा उन आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति को फैलाओ। आपके वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुखी, शांत और परेशानी से छूट नहीं सकेंगी। क्यों? क्योंकि आप वृक्ष की जड़ें हैं। ब्राह्मणों का स्थान वृक्ष में कहाँ दिखाया हुआ है? जड़ों में दिखाया है ना। तो आप सब फाउंडेशन है। आपकी लहर विश्व में फैलेगी। 1899 की अगस्तवाणी का तीसरा पेज। इसलिए बाप दादा बाप समान विशेष साकार में ब्रह्मा बाप समान बनने की विधि भी बताए रहे हैं। वैराग्य वृत्ति की तरफ विशेष अटेंशन दिलाए रहे। हर एक से अनुभव हो कि ये साधनोवश नहीं है लेकिन साधना में रहने वाले, साधनों के होते हुए भी वैराग्य वृत्ति, जो आवश्यक साधन हो उन्हें यूज करो लेकिन जितना हो सकता है उतना दिल के वैराग्य वृत्ति से साधना के वशीभूत नहीं हो। साधनों के वशीभूत होने से साधना का वायुमंडल नहीं बनेगा। अभी साधना का वायुमंडल चारों ओर बनाओ, समय समीप होने के प्रमाण अभी सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद की वैराग्य वृत्ति। सेवा का विस्तार इस वर्ष में बहुत किया, चारों ओर बड़े बड़े प्रोग्राम किए, लेकिन इस वर्ष में पहले भी सुनाया था कि सहयोगी आत्माएं सेवा से बहुत बनी है, समीप ही आई है, संपर्क में आए हैं, लेकिन क्या सिर्फ सहयोगी बनाना है, यहाँ तक ही रखना है क्या? सहयोगी आत्माएं तो अच्छी अच्छी है, अब उन सहयोगी क्वालिटी वाली आत्माओं को और संबंध में लाओ, अनुभव कराओ, इससे सहयोगी से सहज योगी बन जाए। माना सहज योग का अनुभव करने वाले कम है, सेवा तो बहुत हुई, इसके लिए क्या करें? एक तो साधना का वायुमंडल बनाओ और दूसरा बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल, इससे सहजी सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे। उनों की सेवा भले करते रहो लेकिन साथ में साधना तपस्या का वायुमंडल बहुत आवश्यक है। अभी चारों ओर पावरफुल तपस्या करनी है, जो तपस्या मनसा सेवा के निमित्त बने ऐसी पावरफुल सेवा अभी तपस्या से करनी है। अभी मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा सेवा की टचिंग हो उस बात की आवश्यकता है। समय अब समीप आ रहा है, निरंतर स्थितियां और निरंतर पावरफुल वायुमंडल की आवश्यकता है। तो बाप समान बनना है तो पहले ब्रह्मा बाप को जो अंत तक विशेषता देखी वो है बेहद की वैराग्य वृत्ति। न वैभव में और न बच्चों में, सबसे वैराग्य वृत्ति। तो आज के दिन का बाप समान बनने का पाठ पक्का करना, बस ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय अवश्य आगे बढ़ाएगा। बाकी सभी बच्चे सोचते होंगे कि आज तो प्राइज मिलनी है, क्योंकि 31 दिसंबर को बताया था कि 18 जनवरी को प्राइज देंगे। अभी देखो चारों ओर के बच्चे तो हैं लेकिन सब मौजूद नहीं है, तो क्या सिर्फ आप आए हुए को प्राइज दे दें? प्राइज कोई ने कहा 18 बन रहा, अच्छा तो 18 ही बंधन से स्वप्न तक भी मुक्त हुए हैं। स्वप्न में भी कोई भी बंधन की रूपरेखा ना आई हो इसको कहा जाता है मुक्त। हाथ तो बहुत सहज उठाई देते, बाबा को पता है
हाथ उठवाएंगे तो बहुत प्रकार के हाथ उठेंगे, लेकिन फिर भी बाप दादा कहते हैं कि जिस चैकिंग के साथ आपको हाथ उठाने के लिए तैयार होना है, वैसे हाथ उठाओ। बाप दादा को पता है कितने तैयार हैं और कौन कौन तैयार हैं। अभी भी और अंतर्मुखी होकर के चेकिंग करो, कोई को दुख तो नहीं दिया? अच्छा, दुख नहीं दिया, लेकिन जितना सुख का खाता जमा होना चाहिए उतना जमा किया? नाराज नहीं किया, राजी किया, व्यर्थ नहीं सोचा, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प व्यर्थ की जगह पर श्रेष्ठ संकल्प इतने जमा हुए, सबके प्रति सुभावना रखी, सुभावना का रिस्पांस भी मिला, वो चाहे बदले न बदले लेकिन आप उससे संतुष्ट रहे, ऐसी सूक्ष्म चेकिंग फिर भी अपने आप की करो। और अगर ऐसी सूक्ष्म चेकिंग में पास हो गए तो बहुत अच्छे हो, और ऐसी पास आप में अपने अपने सेवा केंद्र पर चारों ओर सेंटर पर अपना नाम रिजल्ट सब बातों में कितना परसेंटेज रहा, सुख कितने को दिया, राजी कितने को किया, कितने आपसे राजी रहे, नाराज को राजी किया कि जो राजी है उनको ही राजी किया, तो ये सब चेकिंग करके पास वे बानर हैं तो अपना नाम अपने टीचर को लिख करके दो, और टीचर जो छोटे छोटे सेंटर हैं उनके ऊपर जो बड़ी बहनें मुकर्रर हैं वो उनसे पास करावे, फिर जो उनके पास सब नाम आ जावे, जोन के पास सब नाम इकट्ठे करो, फिर वो जोन वाले ऐसी पास वाली आत्माओं के नाम मधुबन में भेजे, तब इनाम मिलेगा। फिर ताली बजाएंगे, तो ऐसे जो पास विदानर होंगे उनको प्राइज मिलेगी, उनको मिलना ही चाहिए, वो भी मिलेगी, लेकिन सच्ची दिल से सच्चे बाप को अपना सच्चा पोता मिल बताना और प्राइज ले लेना, क्योंकि बाप दादा के पास सबके संकल्प तो पहुंचते हैं ना, तो जो हाथ उठाने वाले हैं ना उसमें बाप दादा ने देखा कि मिक्स बहुत है और मिक्स वालों ने हाथ उठा लिया, बिना समझे हाथ उठा लेते, और बाप दादा प्राइज नहीं देवे तो भी अच्छा नहीं है, इसलिए कायदे प्रमाण अगर पास विद आनर होते हैं तो उनकी बहुत बहुत मेहनत है, और ऐसे का नाम तो सभी ब्राह्मणों के बीच में प्रसिद्ध होना चाहिए जो पास विद आनर की लिस्ट में आए। आज तो उनको प्राइज के बजाय मुबारक दे रहे हैं, दोनों को का मतलब अभी आठ भी ऐसी स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं, इसलिए जितना भी पुरुषार्थ किया है वो सिर्फ मुबारकबाद है। चौथा पेज, बाद में प्राइज देंगे, ठीक है ना, स्पष्ट हो गया? अच्छा, दूसरी बात थी कि सभी जोन वालों को मार्च तक माइक लाना था, माइक मन स्कूल माइक की तो बात नहीं होगी, माइक मना बहुत बोलने वाला, होशियार बोलने वाला, जो सारी पब्लिक में धाक जमाए दे, तो वो बात याद तो है सभी को, तो पहले मार्च में बाप दादा जोन वालों से रिजल्ट लेंगे,
कितने दिन रह गए?
एक माह के बाद।
किसने और किस क्वालिटी का माइक तैयार किया वो रिजल्ट लेंगे। माइक की क्वालिटी भी देखेंगे और किसने वो तैयार किया वो भी देखेंगे। आप कहेंगे ये माइक है, लेकिन होगा छोटा माइक, सिर्फ समझो कि जिस देश का निकलना है उसी देश का माइक होगा, जिस स्तर का नहीं होगा। जो जिस देश का है वो अपने देश का निकाले, जो उनका भी नहीं होगा देश का होगा तो उसको भी छोटा माइक कहेंगे ना। तो ऐसा कौन सा माइक तैयार किया है वो बाप दादा पूछेंगे। नाम नहीं बताएंगे, पूछेंगे। अगर कोई जोन वाले लास्ट में नहीं भी आ सके तो अपनी चिटकी लास्टर में लिख करके भेज दे। अगर आते हैं तो जोन वालों को निमंत्रण है, जोन के हेड को निमंत्रण है। अगर नहीं आ सकते हैं तो सभी अपनी चिटकी लिख करके भेजो, चिटकी भेज देंगे तो भी चलेगा। अगर ऐसा कोई कारण ना आने का है तो और फिर बाप दादा उन सभी माइक के संगठन का प्रोग्राम रखेंगे। क्या अगर नहीं आ सके और क्लियर नहीं हो सका उन माइक के बारे में जो बाप दादा क्लियर कराना चाहते हैं, तो बाप दादा फिर क्या करेंगे? उन सभी माइक्स के एक संगठन का प्रोग्राम रखेंगे जिसमें सभी तरफ के माइक स्टेज पर आएंगे और उनका विशेष प्रोग्राम रखेंगे। तो फिर देखना ऐसे नहीं हो कि मार्च में माइक भी ले आवे। माइक को नहीं लाना है, मार्च तक माइक को वहां ही रहने दो, लेकिन आप आ जाना। जो माइक हैं उनको तो धूमधाम से मंगाएंगे ना। उनका स्वागत भी अच्छी तरह से करना है, तो उनका स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे और फिर प्राइज देंगे नंबर वन इसको माइक को और निकालने वाले को नंबर दो और नंबर तीन। ठीक है, तभी जान वालों को स्पष्ट हुआ रिजल्ट मार्च में लानी है। तो अभी क्या याद रखा, कौन सी बात को अंडरलाइन किया? बेहद का वैराग्य, आत्माओं को इच्छाओं से बचाओ। बहुत बेचारे दुखी हो रहे हैं, बहुत परेशान हैं। अभी रहम दिल बनो, रहम की लहर बेहद बेहद के वैराग्य की व्यक्ति चारों ओर फैलाओ। अभी सभी बाप के साथ ऊंचे से ऊंचे परमधाम में बैठ बाप के साथ सर्व आत्माओं को रहम की व्यक्ति दो। मना ऐसे वाइब्रेशन फैलाओ फैला सकते हैं। तो बस अभी परम धाम में बाप के साथ बैठ जाओ, वहां से ये देहद के वैराग का वायुमंडल फैलाना भी अच्छा है। चार ओर के सर्वाति स्नेही बच्चों को, सर्व चार ओर के साधना करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा को सारे दिन में बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे दिल के गीत सुनाने वाले, रू रियान करने वाले शक्तिशाली बच्चों को गुरुओं के वरदान से झोली भरने वाले बाप दादा को सबके खुशी के गीत, स्नेह के गीत, रूहानी नशे के गीत, मीठी मीठी बातें बहुत दिल को लुभाने वाली सुनाई, और बाप दादा भी सुनने और मिलने में लवलीन थे। तो ऐसे दिल के सच्चे, दिल के आवाज सुनाने वाले बच्चे बहुत महान हैं और सदा महान रहेंगे। कैसे बच्चे? आर्टिफिशियल आवाज सुनाने वाले न हो, लेकिन बाप के स्नेह की, दिल की आवाज उनके अंदर से निकले, सुनने वाले भी कहें कि इनकी ये दिल से बोलते हैं। तो ऐसे बच्चे महान हैं और सदा महान रहेंगे। ऐसे मीठे मीठे बच्चे सदा बेहद के वैराग्य व्यक्ति को अपनाने वाले हैं। दृढ़ निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा एक के बदले पदम गुना रिटर्न दे रहे। दिलाराम के दिल पर रहने वाले सभी बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यारो नमस्ते। जो बाहर भी सुन रहे हैं उन्हों को भी बाप दादा देख रहे हैं, और बाप दादा दूर नहीं देखते हैं, किनको? जो बाहर वाले हैं, लेकिन सभी तरफ के बच्चों को सन्मुख देख करके याद प्यार और मुबारक और याद की सौगात व याद के पत्रों का रिटर्न दे रहे हैं कि सदा उर्ति कला में रहने वाले बच्चे सदा आबाद रहे। अच्छा, दादी से स्मृति दिवस कहते हैं तो स्मृति में क्या रहा? समर्थी का वरदान याद रहा? आपको तो डायरेक्ट विल कर रखी है ना? क्या क्या विल कर रखी है? क्योंकि जिनको दादियों को साकार में मिला है तो उनको तो सहज स्मृति का वरदान मिला ना? तो अच्छा पार्ट बजा रही हो ना? बाप दादा देख रहे हैं, वृद्धि भी बहुत हो रही है, और ये वृद्धि भी सेवा का सबूत है। तो बच्चों की सेवा को देख बाप दादा बहुत खुश होते। बाप तो गुप्त हो गए, तो अभी सबके मुख पर क्या है? अभी सबके मुख के सामने तो बच्चे हैं ना? ब्रह्मा कुमारियां बहुत अच्छा बना रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, तो अभी ये बच्चे प्रत्यक्ष हुए, अभी बाप को प्रत्यक्ष होना है। बाप ने पहले बच्चों को प्रत्यक्ष किया, अभी बाप प्रत्यक्ष होंगे। जब बाप प्रत्यक्ष होगा फिर समाप्ति हो जाएगी, इसलिए पहले बच्चे प्रत्यक्ष हो रहे, बाद में बाप होंगे। फिर भी बहुत अच्छा है, सेवा का उमंग उत्साह तो अच्छा है। अभी निर्विघ्न बनाने की ज्यादा लहर फैलाओ, वो भी लहर फैल जाएगी तो फिर सहज हो जाएगा। आज सभी तरफ अच्छा वायुमंडल था, सभी स्नेह में डूबे हुए थे, दिल का तो महत्व होता ही है। 18 जनवरी के स्मृति का दिवस महत्वपूर्ण है, इस दिन का भी महत्व है। उनका दादी जानकी ने खास याद दिया है। अच्छा, ओम शांति।
बीस साल हो गए तब से नहीं गुप्त हुए, अब गुप्त हुए याद है, और फिर प्रत्यक्ष भी होना है, बच्चे प्रत्यक्ष हैं, पाप गुप्त हो गए, फिर बाप चाहते हैं बच्चे ऐसे वाइब्रेशन फैलाएं जिनमें त्याग और तपस्या भरी हुई हो, वैराग्य का वातावरण भरा हुआ हो, वाइब्रेशन भरे हुए हो, और आर्टिफिशियल आवाज बोलने वाले न हो, यह हमें बाप की बहुत इतनी है। करके दिखाएं प्रैक्टिकल में, साकार में लोगों को पता चले कि तो साकार इतने ही, उनका साकार में इतने ही दिखाई पड़ता है कि अव्यक्त तो वाइब्रेशन से लोगों को दूर बैठे ही अनुभव होने लगे। जैसे ये कि आज ने दूर दूर से आत्मा साक्षात्कार होता था और किसी चली आती, ऐसे याद का अव्यक्त वातावरण होगा तो दूर बैठे भी आत्मा किसी चली जाएगी। सारे विश्व में वाचा से सेवा नहीं हो सकती, संदेश नहीं फैल सकता, लेकिन अव्यक्त तेज से बच्चों का सेवा का प्रभाव बढ़ता जाएगा,
वो बच्चे प्रत्यक्ष होते जाएंगे। और शुभ संकट माना पॉजिटिव संकट, श्रेष्ठ संकट अपने लिए भी दूसरों के लिए भी कल्याणकारी संकट, क्यों? क्योंकि आप सारी दुनिया अशांत हो रही है, मन अशांत है तो तन भी अशांत हो जाता है। यह है कहा गया है कि ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची गई, सिर्फ ब्रह्मा के संकल्प से ही नहीं, हम सब ब्रह्मा की औलाद है, सारी सृष्टि ब्रह्मा की औलाद है, तो हम अपने लिए भी अनेक जन्म जन्मांतर के लिए शुभ संकल्पों से अथवा अशुभ संकल्पों से अपनी सृष्टि रचते हैं। ये खेल है अभी संकल्पों का, सिर्फ टाइटल धारण कर लेना कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है, माना ब्राह्मण और ब्राह्मणी है, ब्रह्मा की हम आदि संतान है, जनरेशन हमारे से शुरू हो रही है, लेकिन अंदर से कालिक संकल्पों में निकलती रहती है, संकल्पों का प्रदूषण फैलता रहता है, तो वो अपना ब्राह्मण नहीं है, अपना भी अनिष्ट करता है, अपने परिवार का भी अनिष्ट करता है, और देश और विश्व का भी अनिष्ट करता है। श्री बाबा ने कहा कि मधुबन के वाइब्रेशन सारी दुनिया में फैलते हैं, इसलिए अभी हम मधुबन वासी ब्राह्मण बच्चों के ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। संकल्पों को कंट्रोल करने की कोई बल कैसा भी पार्ट बजाय रहा है, लेकिन हमारे अंदर से ये भावना हो कि ये जो आत्माएं पार्ट बजाय रही है ये अपने 63 जन्मों की रील घुमाए रही, बनी बनाई बन रही है, अब कुछ बननी ना है। श्रेष्ठ जन्मों का, वृत्ति कला की जन्मों का, जो पाप और पुण्य का लेप छेप हर आत्मा के अंदर समाया हुआ है, कोई इस समय संगयुग में रील चलती है, और जो रील चलती है उस रील में सब मूड होता जाता है, अच्छा भी मूड हो रहा है, बुरा भी मूड हो रहा है। हर आत्मा अपने अपने संस्कारों से बंधी हुई है, हाँ बुद्धि में ज्ञान मिला हुआ है तो ईश्वरीय ज्ञान से वो अपने संस्कारों को काट सकती है, समझ सकती है कि ये दैवी संस्कार है, ये आसुरी संस्कार है, ये दैवी संकल्प है, ये आसुरी संकल्प है। लेकिन क्योंकि 63 जन्मों का लगा हुआ है, जो हिसाब किताब बना हुआ है एक दूसरे के साथ, वो अभी इस जन्म में अंतिम जन्म में पूरा होना है। ये सारी सृष्टि पर हम सबका ही अंतिम जन्म है, सब ब्राह्मणों का, ब्राह्मणों का ही नहीं, सारी मनुष्य सृष्टि का ही अंतिम जन्म है। 5,000 वर्ष पहले भी परमात्मा ने आकर के कहा था अर्जुन को निमित्त बनाकर, हे अर्जुन ये सब मेरी तारों के बीच में चलाए जाने वाले मूल खोज से दिखाई दिया, ये सारी शक्ति तेरी तारों के बीच में आई हुई पड़ी है, तेरी तारें कोई दूसरी नहीं है, वो आसमान में और जमीन के अंदर, समुद्र के अंदर, सुरंगों में एटम बम भरे पड़े हैं, वो भगवान की गाढ़ है। 5-7 वर्ष पहले इस घातक चीज का नाम निशान नहीं था, 60 वर्ष पहले ढेर के ढेर भगवान ने ही शक्ति पर आए हुए थे, खास करके भारतवर्ष में। 60 वर्ष से पहले असली भगवान भी नहीं आया हुआ, तो सच्चा भगवान जब इस शक्ति पर आता है, सच्चा हीरा जब आता है तो डुप्लीकेट हीरे भी बनते हैं। अभी ये डुप्लीकेट हीरे साथ शांत हो जाए, असली हीरा अब सारी शक्ति में चमकने वाला है, जैसे बड़े बड़े ज्योतिषियों ने बताया हुआ है। तो पूर्वी देशों में कोई एक ऐसा देश है जहाँ पवित्रता को विशेष मान दिया जाता है, वहां से वो शक्ति, वो सारी शक्ति को परिवर्तन करने वाली है, वो उदय हो चुकी है और वो सुधार भी देश से करेगी। वही मन। कहते हैं मन के हारे हार और मन के जीते जीत।
अपने लिए और ना दूसरों के लिए चलाना है। एकाग्रता का अभ्यास होगा तभी ऐसा संभव हो सकता है। और उसके लिए पहली सीढ़ी बता दी आत्म की स्थिति। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा हूँ। मस्तक पर बिंदी या टीका लगाने की जरूरत नहीं है लेकिन उस स्थिति में टिकने की जरूरत है। टीका या बिंदी आत्मिक स्मृति में टिकने की निशानी है। इसलिए गीता में लिखा हुआ है कि मनुष्य जब शरीर छोड़े तो गौरवेशम आवेश्य सम्यक प्रकृति के बीच में आत्मा का केंद्रीकरण करे ध्यान करे। ये पहली सीढ़ी है अपने को एकाग्र करने के लिए। बताया अर्जुन को, अर्जुन ने पूछा
अगर एकाग्र कर लिया तो ये जो विजय वर्ष बताया है वो सार्थक हो जाएगा। विजय वर्ष का मतलब ही है संघर्ष करना और विजय पाना। लेकिन किनकी विजय होगी? जिन्होंने अपना ऐसा अभ्यास बना लिया है एकाग्रता के आधार पर। कैसा अभ्यास? कि पॉजिटिव संकल्प ही चलाने हैं, नेगेटिव संकल्प ना अपने लिए और ना दूसरों के लिए चलाना है। एकाग्रता का अभ्यास होगा तभी ऐसा संभव हो सकता है। और उसके लिए पहली सीढ़ी बता दी आत्मिक स्थिति। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा हूँ। मस्तक पर बिंदी या टीका लगाने की जरूरत नहीं है लेकिन उस स्थिति में टिकने की जरूरत है। टीका या बिंदी आत्मिक स्मृति में टिकने की निशानी है। इसलिए गीता में लिखा हुआ है कि मनुष्य जब शरीर छोड़े तो भ्रभुर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक